नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों को व्हाट्सएप खातों को हैक करने में इस्तेमाल होने वाले घोस्ट पेयरिंग साइबर घोटाले के प्रति आगाह किया। सीबीआई ने रिश्वत मामले में एक सैन्य अधिकारी सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्रैप 4 के अंतर्गत अपना अभियान तेज किया। एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक विश्व ध्यान दिवस आज मनाया जा रहा है। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस अवसर पर वे एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री आज सुबह गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर क्रूज जहाज एमबी सरायदेव पर यात्रा करते हुए परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत 25 मेधावी छात्रों से बातचीत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी असम आंदोलन के 807 शहीदों की याद में गुवाहाटी के बोरागांव स्थित नवनिर्मित शहीद स्मारक क्षेत्रों का दौरा करेंगे और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बाद में दिन में प्रधानमंत्री डिब्रूगढ़ जिले के नामरूप के लिए रवाना होंगे, जहां वे 10,600 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना का भूमि पूजन करेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले वे नामरूप में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के रानाघाट में लगभग 3,200 करोड़ रुपए की दो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जिले के ताहिरपुर में एक परिवर्तन संकल्प सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने परामर्श जारी कर बताया है कि घोस्ट पेयरिंग नाम के एक साइबर कैंपेन का इस्तेमाल व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
मंत्रालय के अनुसार साइबर अपराधी बिना किसी सत्यापन के पेयरिंग कोड का इस्तेमाल करके व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर के जरिए अकाउंट को हैक कर रहे हैं। ये धोखाधड़ी आमतौर पर तब शुरू होती है जब आपको किसी जानकार नंबर से फोटो भेजा जाता है और इसे देखने की अपील का मैसेज आता है। इस मैसेज में एक लिंक होता है जो फेसबुक जैसे प्रीव्यू के साथ आता है और आगे फोन नंबर से जुड़ी एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया की ओर ले जाता है। मंत्रालय ने बताया कि इस तरीके से साइबर अपराधी को बिना पासवर्ड या सिम स्वैप किए पीड़ित के व्हाट्सएप अकाउंट का पूरा एक्सेस मिल जाता है। मंत्रालय ने लोगों से संदिग्ध लिंक पर क्लिक नहीं करने के साथ साथ बाहरी साइटों पर कभी भी अपना फोन नंबर दर्ज नहीं करने की सलाह दी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी विधेयक न केवल किसानों और श्रमिकों के लिए लाभकारी है बल्कि गांवों के विकास से भी हर तरह से जुड़ा हुआ है। उन्होंने ये बात कल नई दिल्ली में चौधरी चरण सिंह पुरस्कार के समारोह को संबोधित करते हुए कही।
जी राम जी, इस बिल की काफी चर्चा हुई, उसके मूल में क्या है? किसान भाइयों, दो चीज। एक, गरीब को काम मिलना चाहिए, इस पर कोई दो मत, मिलना ही चाहिए। और इस बिल में हमने प्रावधान किया 100 दिन नहीं 125 दिन रोजगार की गारंटी। पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ जाए, मनरेगा हो गई। इसमें प्रावधान किया कि मजदूरी भी देंगे, 100 दिन नहीं 125 दिन देंगे, लेकिन उससे गांव की तस्वीर भी बदल के मानेंगे, विकास के काम गांव में होंगे।
श्री चौहान ने कहा कि मंत्रालय 2026-27 के बजट में कृषि क्षेत्र में सुझाव आमंत्रित कर रहा है ताकि एक सुदृढ़ प्रणाली तैयार की जा सके। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIYNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने सेना के एक अधिकारी और एक अन्य व्यक्ति विनोद कुमार को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने बताया कि दिल्ली स्थित सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा के घर पर तलाशी के दौरान 3,00,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ 2 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी भी जब्त की गई। जांच एजेंसी ने विनोद कुमार के राजस्थान के श्रीगंगानगर स्थित घर से 10,00,000 रुपए की नकदी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। ब्यूरो ने बताया कि रक्षा उत्पादन विभाग विभाग में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल शर्मा और उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली तथा दुबई स्थित रक्षा उत्पाद निर्माण और निर्यात में शामिल एक कंपनी के प्रतिनिधियों सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी ने दोनों आरोपियों को कल अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 23 दिसंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया गया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्रैप 4 के अंतर्गत अभियान तेज कर दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों और निर्माण स्थलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन न करने वाले कुल 612 उद्योगों को बंद कर दिया गया है और 3 दिन में 1,00,000 से अधिक प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इस दौरान 3,000 से अधिक निरीक्षण किए गए, 12,000 चालान काटे गए और 16,000 से अधिक वाहनों की जांच की गई। सरकार ने क्षेत्रीय इंजीनियरों और जिलाधिकारियों को निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने में सिविल सेवाओं की गुणवत्ता निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं का कार्यान्वयन प्रशासकों की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। कल शाम हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के 2 दिवसीय सम्मेलन के समापन सत्र में उन्होंने ये बात कही। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि विकसित भारत एट 2047 के विजन की ओर बढ़ रहे देश में शासन की गुणवत्ता और संस्थानों को चलाने वाले लोगों की गुणवत्ता निर्णायक होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राज्य सरकार किसी भी धर्म या समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाली बातों को रोकने के लिए नया कानून बनाएगी। प्रस्तावित कानून को बजट सत्र के दौरान राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। कल शाम हैदराबाद में क्रिसमस समारोह में श्री रेड्डी ने कहा कि यह कानून धार्मिक नफरत को रोकने पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों में भी संशोधन किया जाएगा, जिससे दूसरे धर्मों का अपमान करने वालों को कड़ी सजा मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगामी जनवरी में पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा माह बनाए जाने का निर्देश दिया है। इस दौरान 4E मॉडल शिक्षा प्रवर्तन अभिनियंत्रण और आपातकालीन देखभाल पर ध्यान दिया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा है कि सभी संवैधानिक संस्थानों को संविधान की भावना के अनुरूप काम करना चाहिए, ताकि लोगों को न्यायालय के फैसले उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो। उत्तर प्रदेश के इटावा में हिंदी सेवा निधि ट्रस्ट के 33वें वार्षिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों का 16 भाषाओं में अनुवाद का काम शुरू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत देश का कोई भी नागरिक अपने राज्य की भाषा में प्रमाणित अनुवादित प्रति पढ़ सकेगा। महाराष्ट्र के 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्षों और सदस्यों के पदों के लिए हुए मतदान का अंतिम प्रतिशत आज जारी किया जाएगा। 2 दिसंबर को हुए पहले चरण सहित कुल 286 नगर परिषदों और नगर पंचायतों के मतों की गिनती आज सुबह 10 बजे से शुरू होगी। आज विश्व ध्यान दिवस मनाया जा रहा है। ये आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक है। एक रिपोर्ट।
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। विश्व ध्यान दिवस प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को मनाया जाता है। पिछले वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया था। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। ध्यान एक प्राचीन भारतीय साधना है, जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और योग ग्रंथों में मिलता है। ये मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही साथ उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि ध्यान से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ती है। विश्व ध्यान दिवस हमें संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है।
भारतीय आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में वैश्विक शांति और सद्भाव के लिए ध्यान कार्यक्रम के दौरान एक ध्यान सत्र का नेतृत्व किया। और अब खेल खबरों के साथ हैं करिश्मा राय।
एसीसी पुरुष अंडर 19 एशिया क्रिकेट कप के फाइनल मैच में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। दुबई में यह मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं महिला क्रिकेट में भारतीय टीम आज श्रीलंका के खिलाफ 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच खेलेगी। यह मुकाबला विशाखापत्तनम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके अलावा बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी ने कल रात चीन के हांगचोउ में आयोजित विश्व बैडमिंटन टूर फाइनल्स में कांस्य पदक जीता।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों के सुर्खियों के साथ हैं फरत नाज।
धन्यवाद लवलीन। उत्तर भारत की शीतलहर से प्रभावित होने की खबरें सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण की पहली खबर है कश्मीर में हिमपात, एनसीआर में शीतलहर। हिंदुस्तान के अनुसार शनिवार इस साल का पहला कोल्ड डे दर्ज, घने कोहरे ने बढ़ाई मुसीबत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी देशों में सम्मान, भारत की विदेश नीति का बढ़ा मान, शीर्षक से नवभारत टाइम्स लिखता है श्री मोदी की डिप्लोमेटिक केमिस्ट्री ने संबंध और मजबूत किए। सशस्त्र सेना बल के 62वें स्थापना दिवस पर श्री मोदी का ये बयान कि सशस्त्र सेना बल राष्ट्र की सुरक्षा का मजबूत स्तंभ है, अमर उजाला में है। पत्र ने बल के कठिन हालात में ड्यूटी करते सैनिकों के साथ प्रधानमंत्री के चित्र भी साझा किए। राजस्थान पत्रिका की पहली खबर है उम्र थामने की हसरत में भारत में हर साल खर्च हो रहे 21,000 करोड़ रूपए। पत्र के अनुसार जवां दिखने की हसरत, एंटी एजिंग पर दुनिया खर्च कर रही $50 अरब। राजस्थान पत्रिका ने बेंगलुरु के एक गांव की इस अनूठी पहल को दिया है कि सायरन बजता है और 2 घंटे सभी के फोन टीवी बंद हो जाते हैं। पत्र के अनुसार उस समय बच्चे करते हैं पढ़ाई पर फोकस।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम के नामरूप में 10,600 करोड़ रुपए की अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोगों को व्हाट्सएप खातों को हैक करने में इस्तेमाल होने वाले घोस्ट पेयरिंग साइबर घोटाले के प्रति आगाह किया। सीबीआई ने रिश्वत मामले में एक सैन्य अधिकारी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से ग्राफ 4 के अंतर्गत अभियान तेज किया। एसीसी अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट के फाइनल में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा और आत्मनिरीक्षण और आंतरिक शांति का प्रतीक विश्व ध्यान दिवस आज मनाया जा रहा है। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।